स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 5 जनवरी, दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। समाजवादी पार्टी में आए तूफान के बीच अखिलेश यादव ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक। मुलायम और शिवपाल ने दिल्ली में डेरा डाला। बेंगलुरु के हम्मनहल्ली छेड़छाड़ मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 2 अब भी फरार।
इनमें से एक लड़का हेल्पर है और एक ड्राइवर है और 2 डिलीवरी बॉय है। एक उनमें से 8वीं पास है, एक 12वीं पास है, एक बीकॉम कर रहा और एक आईटीआई में है।
नोटबंदी से आम लोग परेशान हुए, लेकिन दृष्टिहीन लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही।
बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके थंब इम्प्रेशन को इलिटरेसी के साथ जोड़ दिया जाता है और अनपढ़ों को, यानी कि इलिटरेट जो पीपल हैं, उनको ये बैंकिंग सुविधाएं, एटीएम, चेकबुक्स और ये ऑनलाइन बैंकिंग, ये नहीं मिलती।
सुनिएगा भारत के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का शुरुआती करियर संवारने वाले देवल सहाय से खास बातचीत, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक अभी थमी नहीं है। खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं दूसरी ओर उनके पिता मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग में अभी इस बात का फैसला भी नहीं हो पाया है कि चुनाव चिन्ह साइकिल दोनों में से किस गुट को प्रदान किया जाएगा। दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पुलिस प्रमुख ने बीबीसी को बताया है कि शहर में नए साल के जश्न के दौरान कथित सामूहिक छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद का दावा है कि 70 कैमरों के फुटेज की जांच की गई है, जिसमें सामूहिक छेड़छाड़ जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। इसके विपरीत कुछ महिलाओं का दावा है कि नए साल के जश्न के दौरान उनके साथ सामूहिक रूप से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले की वजह से बेंगलुरु की छवि पर असर पड़ा है, जिसे महिलाओं के लिए भारत के अन्य शहरों के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है। ऑस्ट्रिया में पुलिस का कहना है कि वो उन 6 संदिग्ध मनचलों की तलाश कर रही है, जिन पर नए साल की पार्टी के दौरान 18 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। माना जाता है कि ये मनचले मूल रूप से एशिया या उत्तर अफ्रीका के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस प्रमुख मार्टिन क्रिचलर ने बताया। संदिग्ध मनचलों को पकड़ने के लिए हमने एक विशेष जांच दल बनाया है। छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए उन जगह की भी पड़ताल की जा रही है जहां पर शरणार्थी रहते हैं। हमें भरोसा है कि महिलाओं को छेड़ने वाले वहीं कहीं छिपे होंगे। ये थे ऑस्ट्रिया के एक पुलिस अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बीबीसी की एक खास छानबीन से पता चला है कि नेपाल में विनाशकारी भूकंप के 20 महीने बाद भी राहत और पुनर्वास का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि गैर सरकारी संगठनों ने भूकंप पीड़ितों के लिए 22,000 घर बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक केवल 900 घर ही बन पाए हैं। काठमांडू में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक सरकार की ओर से धन जारी करने में हुई देरी की वजह से भूकंप प्रभावितों को अभी तक घर नसीब नहीं हो पाए हैं। इराक में सेना ने सीरिया की सीमा से सटे कस्बों को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से छुड़ाने के इरादे से नए सिरे से आक्रमण किया है। इसमें सेना के साथ साथ स्थानीय कबायली लड़ाकों की भी मदद ली जा रही है। इसमें अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना भी सहयोग दे रही है। इससे पहले इराकी सेना ने कई हफ्तों की लड़ाई के बाद मोसुल को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छुड़ाया था और अब उसने इराक के पश्चिमी हिस्से में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसराइल में पुलिस ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर 3 न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप है। ये वो न्यायाधीश हैं जिन्होंने एक इसराइली सैनिक को घायल फलस्तीनी की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया था। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को न्यायाधीशों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया गया। घायल फलस्तीनी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में इसराइली समाज बटा हुआ है और इसराइली रक्षा मंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। जिम्बाब्वे में अधिकारियों ने घोषणा की है कि राजधानी हरारे में स्ट्रीट फूड बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। टाइफाइड का बढ़ता प्रकोप इसकी वजह बताई गई है, जिसे हिंदी में मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। हरारे में इसकी वजह से पिछले महीने 2 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में आ गए हैं, लेकिन सड़क किनारे खाने पीने की दुकान लगाने वालों ने पाबंदी की ये कहकर आलोचना की है कि इससे उनकी रोजी रोटी का जरिया छीना जा रहा है। तुर्की के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस्तांबुल के नाइट क्लब में नए साल की पार्टी के दौरान गोलाबारी करने वाले बंदूकधारी की पहचान हो गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के भीतर मचा घमासान अभी तक नहीं थमा है। विभाजन के कगार पर खड़ी पार्टी को चुनाव आयोग ने 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी विधायकों के साथ एक बैठक की है और सूत्रों के मुताबिक उनसे समर्थन के हलफनामे पर दस्तखत ली गई है। उधर मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव के साथ दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। सीधे चलते हैं लखनऊ अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, अखिलेश यादव ने विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की है, क्या कुछ हुआ इस बैठक में?
जी अमरीश, जैसा आपने बताया कि सुबह ही 10 बजे बैठक बुलाई थी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, और 206 विधायक तो ऐसे थे जो कि उनके यहाँ पहुंचे थे, जिनकी आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे भी ज्यादा विधायक और 3-4 लोगों को जो मुख्य रूप से शिवपाल यादव के कथित तौर पे शिवपाल यादव समर्थक माने जाते हैं वो नहीं आए थे, बाकी लगभग सारे विधायक थे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जो बेहद चर्चित थे इधर बीच, जो शिवपाल खेमे के ही अभी भी मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, और मुख्तार अंसारी के भाई जो कौमी एकता दल के विधायक हैं सिबकतुल्ला अंसारी, वो भी आए थे और उन्होंने भी कहा कि उनका समर्थन पूरी तरह से अखिलेश यादव को है। तो कहा जाए कि जो पार्टी के लगभग सारे विधायक थे वो आज की बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम MLC भी थे जो विधान परिषद सदस्य हैं, 50 के करीब विधान परिषद सदस्य। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनसे, चूंकि जैसा आपने बताया कि 9 जनवरी को चुनाव आयोग ने इनसे पूरी जानकारी मांगी है कि आपके समर्थन में कितने लोग हैं दोनों ही पक्षों से, तो विधायकों से एक जो हलफनामा कहा जाता है उस पर हस्ताक्षर कराए गए। विधायकों ने अपने समर्थन का एक शपथ पत्र दिया है मुख्यमंत्री को और ये शपथ पत्र चुनाव आयोग में जमा कराया जाएगा।
समीर, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो एक समय विवादों के केंद्र में थे, उनका इस बैठक में शामिल होना क्या संकेत देता है? क्या उन्होंने अपना पाला बदल लिया है?
जी अमरीश, आप ठीक कह रहे हैं, संकेत बिल्कुल यही देता है, और केवल गायत्री प्रजापति ही नहीं, ऐसे तमाम और भी नाम हैं जिन्होंने की, जिनको कहा जाए कि अगर ये दो खेमे हैं तो खेमों की अगर बात की जाए तो उन्होंने पाला अपना बदल लिया है, और धीरे धीरे स्थिति अब ये बनती जा रही है कि जो शिवपाल यादव का जो धड़ा है वो पूरी तरह से काफी कमजोर होता दिख रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पे उनके समर्थकों की, तो चाहे पार्टी ऑफिस हो, मुख्यमंत्री का घर हो, मुख्यमंत्री के घर के आसपास उनका शिवपाल यादव का भी घर है, वहां पे किसी तरह से भी उनके समर्थकों का कोई, जैसा कि पहले इसके पिछले दो महीने पहले जो विवाद हुआ था तो आमने सामने दिखाई पड़ते थे, अब शिवपाल यादव के समर्थक ढूंढने से भी शायद नहीं मिल रहे हैं लोगों को।
जी समीर, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्टूडियो में नितिन श्रीवास्तव मौजूद है। नितिन, आपने सुना मुलायम दिल्ली में हैं, अखिलेश लखनऊ में बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के भीतर आखिर चल क्या रहा है?
पार्टी के भीतर दरअसल अब इस वक्त यही हो रहा है जैसा समीर ने बताया कि शिवपाल के घर के सामने का जो मंजर है वो खाली होता दिख रहा है और अखिलेश के घर के अंदर रौनक बढ़ती जा रही है। पहला तो ये संकेत है। दूसरा संकेत ये जो जहां पर समीर ने छोड़ा उसके आगे की बात बताऊं कि जो आज शपथ पत्र साइन कराए गए हैं तमाम विधायकों से, ऐसा बताया जा रहा है कि गायत्री प्रजापति और दूसरा जो उन्होंने नाम लिया मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल, यही वो प्रमुख वजह थी जिसकी वजह से अखिलेश और शिवपाल की और परिवार की कलह बाहर निकली थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो तमाम शपथ पत्र लेकर बहुत वरिष्ठ मंत्री और नेता नरेश अग्रवाल जो अखिलेश की तरफ रहे हैं अभी तक, वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं ताकि वो और रामगोपाल यादव जाकर चुनाव आयोग में उसको दे सकें। लड़ाई जो है वो सिर्फ एक चीज़ की है। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र से हमने बात की, उन्होंने बताया।
तो ये पूरी लड़ाई सिंबल को अपने पक्ष में लाने के लिए हो रही है। हालांकि अगर सिंबल फ्रीज भी हो जाता है, इलेक्शन कमीशन कर देता है, तो भी एक लड़ाई का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव ग्रुप जीतने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा उस ग्रुप का मानना है।
तो यही बात है अभी तक, लेकिन इस बात के साफ संकेत नहीं मिल पा रहे हैं कि मुलायम सिंह किस करवट बैठेंगे। आज 5 तारीख है, दरअसल आज वो दिन है जब मुलायम सिंह ने जल्दबाजी में, जब अखिलेश ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनने की और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की थी तो बुलाया था, आज वो ऐसा कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, तो इस वक्त तो अखिलेश का पलड़ा भारी दिख रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। और शनिवार को होने वाला इंडिया बोल भी इसी विषय पर है।
BBC इंडिया बोल।
समाजवादी पार्टी में दो धड़े, दोनों एक दूसरे को पार्टी से निकालने पर तुले, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा? यही है इस हफ्ते BBC इंडिया बोल का विषय। क्या हैं इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 7 जनवरी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
बुधवार को बेंगलुरु में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें 31 दिसंबर की रात घर लौट रही एक युवती के साथ दो युवक छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने कम्मनहल्ली की उस घटना के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त का नाम अयप्पा है जबकि सुदेश, सोमशेखर और शीनी अन्य अभियुक्त हैं। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने इन गिरफ्तारियों के बारे में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद से बात की।
सूद साहब, आप 4 लोगों की गिरफ्तारी किए हैं इस कम्मनहल्ली मोलेस्टेशन केस में, छेड़छाड़ के केस में, तो क्या वजह क्या थी ये लोग उसके पीछे वो लड़की को के साथ इस तरीके से सलूक किया?
देखिए, एक तो पहले मैं बता दूं कि मैं जो विक्टिम है, लड़की है, उसके बारे में आपको कुछ भी डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि वो पहले ही बहुत सफर कर चुकी है और हम उसको और प्रताड़ित नहीं करना चाहते। ये लड़की जो है ये करीब 5-6 दिन पहले बेंगलोर आई है, अपने दोस्त के साथ रह रही थी और ये जो अपराधी हैं ये भी उसी एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने इसको देखा और ये करीब 4-5 दिन से इसको स्टॉकिंग कर रहे थे, इसके आगे पीछे जा रहे थे और मतलब प्लान बना रहे थे। और ये मौका उनको 31 को मिला क्योंकि उनको पता था कि 31 दिसंबर को ये बाहर जाएंगी और रात को 2 बजे वापिस, 1-2 बजे वापिस आएंगी। तो ये उसी एरिया में घूम रहे थे और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये दो फ्रेंड्स, सहेलियां इकट्ठी आई, एक थोड़ी आगे चली गई और दूसरी को इन्होंने इस तरह से मोलेस्ट किया। तो इनकी नजर इस लड़की पे थी 4-5-6 दिन से।
उसी एरिया में रहते हैं ये लोग?
हाँ, उसी एरिया में ये लोग रहते हैं। इनका इनफैक्ट जो घर है, एक अपराधी का घर इनके आसपास ही है, तो वो नजर थी और इनकी जो इंटेंशन थी वो खराब थी शुरू से, और जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने ऐसा जघन्य काम किया।
तो ये लड़के करते क्या है?
ये जो लड़के हैं, ये 4 लड़के हमने जो, और 2 लड़के और हैं एक्चुअली, टोटल 6 लड़कों ने ये प्लान बनाया था। 4 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 2 भी अरेस्ट करने हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी भी हमें मिल चुकी है। इनमें से एक लड़का हेल्पर है और एक ड्राइवर है और 2 डिलीवरी बॉय हैं। एक उनमें से 8वीं पास है, एक 12वीं पास है, एक बीकॉम कर रहा है और एक आईटीआई में है। तो चारों ही एक तरह से उसी एरिया में रहने वाले लोली पेड वर्कर्स हैं।
ये थे बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
नोटबंदी की घोषणा के बाद के करीब 2 महीनों में बैंकों और एटीएम्स के सामने लंबी कतारें लगी, नए नोटों की कमी हुई और फिर इंटरनेट और कार्ड के जरिए भुगतान करने की पैरवी की गई। इन सब बदलावों के मुताबिक अपनी जीवन शैली और बैंक से जुड़े काम को ढालने में लोगों को काफी दिक्कतें आईं। पर एक तबका है जिसके लिए ये दौर और भी ज्यादा मुश्किल भरा साबित हुआ और उनका मानना है कि उनकी मुश्किलें न आम जनता समझती है, न सरकार या बैंक कर्मचारी। दृष्टिहीन लोगों से मुलाकात कर यही समझने की कोशिश की संवाददाता दिव्या आर्य ने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक दृष्टिविहीन लोगों को किसी भी बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसमें चेकबुक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लॉकर की सुविधा सभी शामिल हैं। पर मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली भावना शर्मा के पास बैंक अकाउंट तो है पर बैंक न तो एटीएम कार्ड देता है न इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर नेम जारी करता है। पहले नोटबंदी से परेशान भावना अब कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने से दुखी हैं।
नहीं मैम, मेरे पास कोई एटीएम कार्ड नहीं है क्योंकि मैंने जब बैंक में गई थी खाता खोलने तो बैंक वालों ने मुझे बोला कि ब्लाइंड के लिए एटीएम नहीं है क्योंकि ब्लाइंड एटीएम यूज कर ही नहीं सकते। सपोज किसी ने, आपने किसी को दिया और उन्होंने उनके एटीएम से पैसे निकाल दिए, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है।
तो उन्होंने आपको कार्ड इशू करने से ही मना कर दिया?
यस मैम।
वैसे भावना के लिए बैंक में खाता खुलवाना भी बहुत मुश्किल था। राजधानी दिल्ली से बहुत अलग उनके इलाके में विकलांगों के अधिकारों की तरफ जागरूकता कम है। वो बताती हैं कि पिछले साल जब खाता खुलवाने गईं तो वो उस बैंक के सामने किसी विकलांग की अपनी खाता खुलवाने की ये पहली दरख्वास्त थी, मना कर दी गई। फिर दूसरे बैंक में भी वही हुआ तो किसी जान पहचान वाले के रसूख की मदद से आखिरकार अकाउंट खुलवा पाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध कर रहे योगेश कुमार यादव के मुताबिक बैंक एक और वजह से भी दृष्टिहीन लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित रखते हैं।
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर एक एजुकेटेड दृष्टिहीन अपना थम इम्प्रेशन लगाता है, अब डेलिबरेटली अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए
हस्ताक्षर की जगह थम इम्प्रेशन लगाता है।
जी, हस्ताक्षर की जगह, क्योंकि साइन तो कॉपी किया जा सकता है लेकिन थम इम्प्रेशन नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके थंब इम्प्रेशन को इलिटरेसी के साथ जोड़ दिया जाता है। बैंक की नजर में हम अनपढ़ हो गए और अनपढ़ों को यानी कि इलिटरेट जो पीपल हैं उनको ये बैंकिंग सुविधाएं एटीएम चेकबुक्स और ये ऑनलाइन बैंकिंग ये नहीं मिलती।
अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने का सबसे आसान तरीका समझे जाने वाले एटीएम का इस्तेमाल भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए आरबीआई ने बैंकों को एक तिहाई एटीएम्स में ऐसे सॉफ्टवेयर लगाने की हिदायत दी जिससे उनका देखने के अलावा सुनकर भी इस्तेमाल किया जा सके। पर 8 साल पहले दिए इस निर्देश के बावजूद भारत में इस वक्त कुल 2 लाख में से सिर्फ 5,000 टॉकिंग एटीएम है। गोरखपुर और मऊ से हाल ही में दिल्ली लौटे छात्र अविनाश शाही बताते हैं,
टॉकिंग एटीएम तो रूरल एरियाज में काम ही नहीं होते, तो सरकार ने बहुत सारे टॉकिंग एटीएम शुरू किए हुए हैं लेकिन उनकी ओवरसीइंग या जो मॉनिटरिंग है वो हो ही नहीं रही है कि वो क्या एक्चुअली काम मतलब कर रहे हैं, बस वो कागज पे हैं कि यहाँ टॉकिंग एटीएम लगे हुए हैं।
सरकार के दावों से अलग भावना के मुताबिक नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों को भी दृष्टि विहीनों के मुताबिक नहीं बनाया गया। 2000 के नोट का आकार पुराने 20 के नोट जैसा है, पतले कागज का है और छूने से कुछ अलग नहीं समझ आता। विकलांग लोगों को समान अधिकार देने के लिए इस संसद सत्र में पारित किए गए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कानून से 21 साल पहले 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पारित हुआ था। ये बताता है कि सरकार की मंशा तो है और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं विकलांगों की जिंदगी आसान बनाने की क्षमता रखती है, पर योगेश मानते हैं कि इन पर अमल की कमी की वजह से सबका साथ सबका विकास उन लोगों के लिए तो अब तक नहीं हो पाया है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी पातियों का। तो आज आपकी चिट्ठियों के साथ हैं बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा और वंदना।
आपकी राय। आज आपकी चिट्ठियां लेकर स्टूडियो में मैं मौजूद हूं वंदना, और मेरे साथ हैं विशेष मेहमान ही बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप रूबरू हो रहे हैं, तो खुद ही बताएं अपने बारे में।
नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं हूं मुकेश शर्मा
और हमारे बीबीसी हिंदी सेवा के नए संपादक।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वंदना
जी। तो शुरू करें सिलसिला।
जरूर।
काफी सारे जो पोस्ट कार्ड आए हैं और बहुत सारे हैं वर्षांत कार्यक्रमों पर जो विशेष कार्यक्रम चले कुछ दिनों में। अशोक कुमार ठाकुर लिखते हैं कि राजेंद्र यादव पर जो रिपोर्ट थी वो इन्हें बहुत ही अच्छी लगी। और इसके अलावा सुरेंद्र नाथ सिंह, ये ईमेल है चिट्ठी नहीं है, ये नागांव असम से हमें अक्सर लिखते हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि जो विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन हस्तियां हैं उनके बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी सुनाई कि दिल बाग बाग हो गया। ऐसे बहुत सी और चिट्ठियां हैं।
वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर के साथ साल की शुरुआत हुई है। हमारी हर साल ही कोशिश होती है, मैं पिछले जितने भी वर्षों से देख रहा हूँ, कि कुछ ना कुछ अलग अपने श्रोताओं तक पहुंचाया जाए, और इस बार फिर वही कोशिश थी। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि श्रोताओं को हमारी वो कोशिश पसंद आई। ये कोशिश हमेशा की तरह जारी रहेगी।
और बहुत सारे लोगों लगातार लिखते आ रहे हैं, जब से ये घोषणा हुई है कि हिंदी रेडियो के कार्यक्रम अब कम हो गए हैं उसके बाद से इस बार भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं। कमल जावेरी ये लिख रहे हैं उज्जैन से, इन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहते हैं कि एकदम ही पहले कभी समय था कि एक एक घंटे का कार्यक्रम होता था और अब एकदम सिमट गया है, ये कटौती क्यों, क्या जो बीबीसी हिंदी का स्थान है वो इतना कम हो गया है?
नहीं, कटौती की तरह से इसको नहीं, या स्थान कम होने की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। एक्चुअली कोशिश पूरी ये है हमारी कि जो कार्यक्रम हमारा है उसमें पूरा नया जो एलिमेंट्स होते हैं या जो नई नई चीज़ें हैं वो पूरे ध्यान से हम उन लोगों तक पहुंचाएं। हम सबका भी जुड़ाव है अपने श्रोताओं से भी और इन कार्यक्रमों से भी। और जब हम ये बदलाव, मैं तो इसको कहता हूँ, जब ये बदलाव हो रहा था तब भी हम लोगों को लगा था कि ज़रूर कुछ लोग कहीं इसको इस तरह से ना देखें कि क्या रेडियो में कुछ कटौती।
बिल्कुल, ये एक चिट्ठी थी जो उसमें सवाल ये था कि कहीं आप बंद तो नहीं कर
नहीं रहे हैं। ऐसी कोई कटौती का ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कार्यक्रम बदलते हुए घटनाक्रम के ऊपर लगातार ध्यान रखते हुए, और वो कार्यक्रम अभी भी हो रहा है और उसी पैनेपन के साथ हमारी कोशिश है कि ये कार्यक्रम जारी रहे।
तो अगला एक ईमेल ले लेती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं अरुण कुमार स्टेशन मास्टर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में काम करता हूँ और मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि सुशीला सिंह जी ने 22 दिसंबर को जब कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो 22 अगस्त बोल गई और अंत तक वो अपनी भूल भी सुधार नहीं पाई। लेकिन वो कहते हैं, हमने सोचा कि चांद इतना खूबसूरत है मगर दाग तो उसमें भी है। तो बीबीसी हिंदी प्रसारण सेवा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, कुछ गलती होती है तो हम इसे बीबीसी की ही खूबसूरती मान लेते हैं।
क्या बात है, देखिए कितने खूबसूरत अंदाज,
बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी बात भी कह गए।
हाँ, ये गलतियां ना हो, हमें और चौकन्ना रहने की जरूरत है और रहते भी हैं, और आगे भी इस चीज का ख्याल रखें।
एक और ईमेल है, ये है एहसान असगर मलकापुर जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से। इनकी शिकायत है कि बीबीसी हिंदी के ऐप से कार्यक्रम सुनते समय मोबाइल की स्क्रीन लॉक नहीं होती और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है, और जेब में मोबाइल डालो तो जरा से टच से कार्यक्रम बंद हो जाता है।
किस तरह से तकनीकी प्रगति के साथ लोग हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ये देख के अच्छा लगता है। एहसान असगर साहब जी ने जो ये मुद्दा रखा है, इस पे हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो तकनीकी टीम है उस तक हम ये बात पहुंचाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है।
और ये भी ये पूछ रहे हैं कि क्या जो नई सेवाएं हैं वो bbchindi.com पर ही, यही बीबीसी हिंदी की साइट पर ही मिलेगी या कोई उनका रेडियो रूपांतरण होगा?
नई भाषाओं की जो सेवाएं हैं तो हर भाषा की अपनी वेबसाइट होगी और उससे जुड़ा हुआ जो भी पूरा मल्टीमीडिया यानी अलग अलग, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, वो उनकी अपनी वेबसाइट्स पर
उपलब्ध रहे। जी, तो जाते जाते एक चिट्ठी मैं ले लेती हूँ। ये है नरेंद्र सिंह शिकावत जिला झुंझुनू राजस्थान से। इन्होंने सबकी तारीफ एकदम अलग अलग अंदाज में की है, मोहनलाल जी की, मोहिनी मृदुवाणी, राजेश प्रियदर्शी की वाक चातुर्य, विनीत खरी की खरे खरे, रिहान फजल साहब का तो कहना है कि आज जैसे ऐसा लगता है कि कोई जगा हुआ शेर अचानक अपने लक्ष्य पर टूट पड़ा हो।
क्या बात है, देखिए कितना
क्रिएटिविटी।
अच्छा, बिल्कुल। और ये चिट्ठी आप जरूर मोहनलाल जी को या राजेश जी को, सबको जरूर पढ़वा दीजिएगा ताकि सबको पता रहे कि किस तरह से उपमाएं आई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस चिट्ठी का।
और जाते जाते एक बार पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल करना चाहें तो पता है bbchindi.letters@bbc.co.uk। और अब मुझे और मुकेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
चिट्ठियां इसी तरह लिखते रहिएगा। भारत के वनडे और T20 क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में रहे हैं। उन्होंने अब तक 90 टेस्ट, 283 वनडे और 73 T20 मैचेस खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने करीब 5000 रन बनाए जबकि वनडे में अब तक 9000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारत के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद भी अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। हालांकि उनका करियर बनाने में कई लोगों का हाथ रहा, जिनमें उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर केशव रंजन बैनर्जी और क्रिकेट प्रशासक देवल सहाय का अहम योगदान रहा। थोड़ी देर पहले मैंने देवल सहाय से बात की और धोनी के शुरुआती दिनों के बारे में पूछा।
वो जब जूनियर था, स्कूल टीम के लिए खेल रहा था, उस समय हम सेक्रेटरी थे रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। तो उस समय क्या था कि वो स्कूल टीम के लिए खेल रहा था और उस मैच में शुरू से, फर्स्ट मैच से ही वो सबको अट्रैक्ट कर रहा था। हार्ड हिटिंग शॉट्स लेता था, ऑलराउंड ग्राउंड खेलता था, तो सबका नजर उसमें पड़ गया था। उसी समय से हमारा भी नजर पड़ा था। हम लोग जब वो सेकेंड ईयर जब अपना हुआ क्रिकेट खेल रहा था, तो उसके बाद हम लोग उसको इंकरेज करने के लिए हम लोग उसको रांची डिस्ट्रिक्ट ए टीम में हम लोग उसको इंक्लूड किए थे।
उसके बाद क्या हुआ था?
उसके बाद वो स्कूल में रिकॉर्ड स्कोर किया और जिससे कि मतलब उसका ऐसा था कि वो जब बच्चा था, छोटा था, उस समय उसको देखने के लिए, उसका खेल देखने के लिए ग्राउंड में आते थे। तो उसके बाद हुआ कि वो डीएवी स्कूल में पढ़ता था, डीएवी स्कूल को वो एक बार चैंपियन बनाया। तो उसी समय हम लोग और एक इंडिया के सेलेक्टर थे, हम नाम भूल गए, वो थे चीफ गेस्ट। तो उसी समय उसका हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको स्टाइपेंड दिया जाए। तो ECL से जब रांची हम एक बार आए, यहाँ रांची CCL ज्वाइन करने के लिए आए, तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी के फादर से हमारी बात हुई और वो महेंद्र सिंह धोनी, हम उसके फादर प्रपोज किए और हम कहे कि अगर वो आएगा तब तो हम अभी क्रिकेट टीम नहीं है, अगर वो आएगा तो हम क्रिकेट टीम जरूर बनाएंगे। तो वो उसके बाद उसको सेलेक्ट किए हम लोग स्टाइपेंड में, हम अपने सीएमडी से बात किए, सीएमडी बोले कि अगर आप फील करते हैं, उस समय वो कोच नहीं कहलाता, केवल रांची डिस्ट्रिक्ट ए टीम में उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके लिए वो 11 में नहीं था, तो वो बोले कि ठीक है आप अगर समझते हैं कि डिजर्विंग है देन वी शुड फॉर्म ए क्रिकेट टीम। तो प्रैक्टिकली सीसीएल का क्रिकेट टीम एमएस धोनी ही फर्स्ट प्लेयर था जिसके कारण लिया गया।
जो फिल्म बनी है धोनी पर उसमें एक चीज दिखाई गई है कि उन्हें अगरतला जाना था और वो आपके पास फिनेंशियल हेल्प के लिए आए थे और फिल्म में दिखाया गया है कि आपने अनजाने में ही उनकी मदद नहीं की थी, इस बात में कितनी सच्चाई है सर?
ये बात था कि हम ऑफिस में थे और करीब 5:30 बजे धोनी आया, हमको पता नहीं था कि किस लिए आया है, हम उससे बुला के पूछे कि भाई क्या बात है, तो उस समय तक सब उसको जाना था अगरतला, तो हम उससे बोले कि तुम कैसे पहुंच सकते हो, हम उसके सामने फोन किए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को कि आप लोगों ने क्यों लेट इन्फॉर्मेशन दिया, अब बताइए कि कैसे जाइए, तो ये बोला कि हम गाड़ी से चले जाएंगे और वहां से हम प्लेन से फ्लाइट करके चल जाएंगे, तो हम कहे कि ठीक है, तो उस हम कहे क्या चाहिए तुम्हें, वो बोला कि गाड़ी का जरूरत था, हम बोले कि तुम पैसा ले लो और उसको जो भी एक्सपेंस होगा हम उसको रिम्बर्स कर देंगे, ये तो और क्या कर सकते थे उसमें, आप सोच सकते हैं कि 10,000-20,000 लेकर तो कोई ऑफिस में रहता नहीं है, तो ऑफिस का सब कैश काउंटर वगैरह सब बंद हो गया था, इसलिए वो उसमें कोई नहीं था, वो भी बोला कि हाँ ठीक है हम ये कर लेते हैं, हम लोग रिम्बर्स किए भी उसको पैसा, हमको इतना नहीं पता था जैसा कि पिक्चर में देखे कि इतना हार्डशिप हुआ उसको कलेक्ट करने में।
आज धोनी बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, रांची में साल का 2 महीना वो रांची में तकरीबन गुजारते हैं, जब वो रांची जाते हैं आपसे मुलाकात होती है, मिलने आते हैं, मिलते हैं तो किस रूप में मिलते हैं?
बहुत वार्म हार्ट से मिलते हैं, एक पार्टी में वो हमसे मिले थे जिसमें कि झारखंड के जितने भी मंत्री वगैरह थे सब आए हुए थे, सुदेश महतो जी के यहाँ था, और वो जब हमको देखे उस भीड़ में तो सबको बोले भाई मैं एक बार अभी हमको छोड़ दीजिए, हमसे किनारे में आके मिले, हमारी फैमिली थी उससे भी मिले, बहुत देर रहे बैठे रहे बात किए, तो उनका हम सोचते हैं कि जैसा थे वैसा है।
ये थे बिहार और झारखंड के क्रिकेट प्रशासक रहे देवल सहाय, और अब बाकी की खेल खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। मुंबई के 17 साल के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही रणजी मैच में शतक लगाकर शानदार पदार्पण किया है। मुंबई की टीम से खेल रहे पृथ्वी ने ये कारनामा तमिलनाडु के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में किया, जहां उन्होंने 120 रन की पारी खेली। हालांकि मैच की पहली पारी में वो सिर्फ 4 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अपने चयन को सही साबित करके दिखाया। पृथ्वी की तुलना पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से की जा रही है, जिन्होंने भी अपने पहले रणजी मैच में शतक जमा कर आगाज किया था। और वहीं कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ कप चैंपियनशिप का खिताब चौथी बार अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से मात दी। मैच के बाद टीम की गोलकीपर अदिति चौहान ने बीबीसी को बताया कितनी मेहनत रही टीम की इस खिताब की रक्षा करने में।
हम लोग काफी मेहनत करी, हमारा जो कैंप लगा था इस टूर्नामेंट के प्रिपरेशन के लिए वो भी काफी लंबा लगा था, 20 दिन का कैंप था, तो काफी कॉन्फिडेंट थे हम लोग, क्योंकि जितनी बार भी सैफ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है, हम तीनों से पहले जो 3 एडिशन हुए हैं उस तीनों में हम लोग चैंपियन बने थे, और तीनों बार हमने नेपाल के अगेंस्ट फाइनल खेला था, उनसे जीता था। पूरा भरोसा था अपनी अपनी प्रिपरेशन पे और अपनी स्ट्रेंथ पे कि हम इस बार भी जीतेंगे।
ये भी दिलचस्प बात है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने अपने पिछले 19 मुकाबलों में हार का मुंह नहीं देखा है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही,
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक अभी तक थमी नहीं है। खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक की है, वहीं दूसरी ओर उनके पिता मुलायम और चाचा शिवपाल यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पुलिस प्रमुख ने बीबीसी को बताया है कि शहर में नए साल के जश्न के दौरान कथित सामूहिक छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।